نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدنی دور میں سے ہم غزوہ خندق کو ہی کنٹینیو کریں گے. ابھی تک ہم دیکھ چکے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے جان پر کھیل کر اپنا دفاع کیا, اسلام کا دفاع کیا, مدینہ کا دفاع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, اور ان تھک محنت کی ناممکن کام جو نظر آتا تھا وہ ممکن ہوا اور مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے. ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے اللہ کے نبی کی ذات سے اس میں کہ اپنی پوری کوشش کرو پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑو. ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہو گے خندقیں نہیں کھدیں گی, اپنی دفاعی پالیسی اسٹرانگ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان خود اپنے لیے کچھ نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا, پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تھوڑی کوشش ہو اللہ برکت دے گا, ٹوٹی پھوٹی ہو اللہ اس کو جوڑ دے گا, لیکن صرف اللہ کی آس پہ کچھ نہ کرنا یہ اسلام کی سنت نہیں. خندق تیار ہو گئی. دوسری طرف سے اب دیکھتے ہیں کہ قریش کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تقریباً 4,000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے. روما, جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع السیال میں خیمہ زن ہوئے. ایک مقام ہے, نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. دوسری طرف سے قبیلہ غطفان اور نجد کے ساتھی 6,000 کی تعداد میں آئے اور وہ بھی احد کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی جھلکیاں سورہ احزاب میں پیش کی ہیں. آیت نمبر 22 میں اس کا منظر اس طرح سے پیش کیا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب اہل ایمان نے ان گروہوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. دیکھیے مومن کی نظر کس پہ, وہ جنگوں کو زحمت نہیں سمجھتا. یہاں کون سے وعدے, کوئی ان کو ابھی مال غنیمت تو نہیں دکھ رہا. ٹھیک ہے, متقی لوگ اور صاحب فراست سمجھ گئے کہ جو آج ان کے پاس ہے وہ کل ہمیں ملے گا, لیکن ان کو نیکی کے مواقع کا ملنا اللہ کا وعدہ لگتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا, اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا. ایک ایک لفظ ایمان کے پانی میں بھیگا ہوا دکھتا ہے. سچے ایمان کے سوا یہ باتیں نہ تو زبان سے نکلتی ہیں اور نہ کوئی سنتا ہے, لیکن حقیقت ہے کہ مشکل حالات ایک قسم کا بیرومیٹر ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں. اگر آپ بھی چاہیں نا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایمان کتنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ مشکل حالات میں میرا رسپانس کیا ہوتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے اس وقت ایمان کا لیول بڑھ جانا یہ سچے ایمان کی علامت ہوتی ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اس کے برعکس نفاق اور ضعف ایمانی جو ہے اس کی دلیل اسی صورت کی آیت 12 یعنی 12 میں ملتی ہے, جس میں منافقوں اور کمزور نفس لوگوں کی حالت بیان کی گئی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو اللہ کے وعدے کو فریب کا وعدہ کہے گا بتائیے کیا پھر اللہ اس کی مدد کرے گا؟ اور منافقوں کو اس بدگمانی کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان سے نیکی کرنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے, جذبے ٹوٹ جاتے ہیں, ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, جیسا کہ یہاں بھی دکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے مقابلے میں 3,000 افراد کو لے کر آئے. سلہ نام کے پہاڑ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی گئی. سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حائل تھی. اس جنگ میں مسلمانوں نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جنگوں میں بالکل اسی طرح باتیں راس رکھی جاتی ہیں, جیسے ہم اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ چینی ختم ہے کہ کیا ہے. بعض لوگ اشاروں سے بچوں کو کہتے ہیں اچھا یہ کہوں تو 3 کپ ہیں اور ٹی بنا دوں تو چائے ہے, تو سمجھ جانا کہ چائے بنانی ہے. اسی طرح جنگوں میں بھی اپنی باتیں راز رکھی جاتی تھی کیونکہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مسلم ہے کون نان مسلم ہے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. ہر ایک میدان جنگ میں آتا تھا, اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع یاد تھوڑی رہتا تھا کہ کس کے دل پہ کیا. तो ये कूटवट कुछ इस किस्म की चीज़ होती थी कि अगर कोई दुश्मन किसी को मारने लगे, मुसलमान के आगे मुसलमान ही आ जाए और उसको मारे, तो उसको पता हो कह रहे मैं मुसलमान हूँ, तो उस वक्त वो ये कोडवर्ड बोल देता है, हामीम ला यंसुरून, हामीम इनकी मदद ना की जाएगी। तो जब कोई शख्स ये बोल देगा तो मुसलमान समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा मुसलमान है, और जो ना बोले तो समझ जाएं कि वो नहीं है। यहाँ देखिए कि जो चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद हमें सामने दिखती हैं, पहले दौर में ज़रूरत के तहत लोग इस तरह से काम चलाते थे। कभी हम सोचते हैं कि अच्छा, जब मशीनें नहीं थी तो काम कैसे चलता था, तो मुझे ऐसे लगता है कि तब काम बल्कि और ज़्यादा दिमागों से चलता था और लोगों की अपनी सोच बहुत उभरती थी। बहरहाल मदीने का इंतज़ाम इब्ने उम्मे मकतूम के सुपुर्द किया गया, औरतों और बच्चों को मदीना के किलों और घड़ियों में महफूज कर दिया गया, क्योंकि डर था कि बीच में दुश्मन भी हैं। आगे हम देखेंगे कि एक घर के भेदी ने इस जंग में मुसलमानों के साथ गदर किया, जिसकी सज़ा फिर उनको जल्द ही भुगतनी पड़ गई। बहरहाल जब मुशरिकीन हमले की नीयत से मदीना की तरफ आए, ना उनके वहमो गुमान में था, ना कभी उनके बड़ों ने ये बात देखी ना सुनी कि एक चौड़ी सी खंदक इनके और मदीना के बीच में हायल है। और खंदक वो ऐसी नहीं थी कि एक छोटी सी खाई है, बड़ी गहरी थी, जिसके अंदर से ना तो घोड़ा गुजर सकता था, ना ऊंट गुजर सकते थे, ना पैदल उसको पार कर सकता था। खैर, उनको मुहासरा करना पड़ा। वो घरों से चलते वक्त इसके लिए तैयार होकर नहीं आए थे, क्योंकि दिफा का ये मंसूबा इनके बकौल एक ऐसी चाल थी जिससे अरब वाकिफ ही ना थे। लेकिन उन्होंने इस मामले को बिल्कुल खाली नहीं जाने दिया। एकदम देखकर तो उनको गुस्सा आया होगा यकीनन, उनको तो कोई उम्मीद नहीं थी, वरना घर से कोई ब्रिजेस बना के ले आते, लकड़ी के तख्ते ही ले आते, कुछ भी ला सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि आज के सहूलत के इंतजाम नहीं थे कि पीछे से ये भेज दो वो भेज दो, आने और जाने में दिन लगते थे। खैर, खूब गुस्से और गज़ब के साथ खंदक के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। वो देख रहे थे कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ी सी खंदक की चौड़ाई कम हो और हम वहाँ से उतर सके और मुसलमानों तक पहुँच जाएँ। यहाँ एक छोटा सा अमल का नुक्ता नोट कीजिएगा। जब मुसलमान एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर काम करते हैं, बेहतरीन टीम वर्क करते हैं, तो दुश्मन हमेशा किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जो ज़रा से अपने मकसद से हट चुका हो, जिसके दिल में शक का बाल आ चुका हो, जो बदगुमान हो चुका हो, या जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज ना मिल रही हो, तो वो इस तरह की तंग जगह को ढूंढ के उस खंदक को पार करते हैं। जब मुसलमान एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले हुए चलते हैं, सूरत सफ की शुरू की आयात में आता है कि वो कैसे हैं, कान्नहुम बुनयानुम मरसूस, जैसे कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। तारीख में जब भी इस्लाम को तकलीफ हुई या मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी ही खंदक की चौड़ाई में कुछ कमी थी कि कुछ लोग घर से ही ऐसे उठ गए कि जिन्होंने इस्लाम के राज दूसरों को दे दिए, और नतीजा जो था वो फिर भुगतना पड़ा सबको। उनको कहीं से कोई जगह ना मिली। यहाँ एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जिन्होंने भी खंदक खो दी, अगर सबकी कोशिश एक जैसी ना होती, तो हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने खंदक कम चौड़ी खोदी होती, उनकी वजह से सारे लश्कर इस्लाम को नुकसान होता। तो यहाँ सीखने की बात यह है कि जब मिलजुल कर दीन का काम किया जाए, तो अपनी हर तरह की कोशिश की जाए, साथियों के साथ लग के जो बात डिफाइन हो चुकी, जो प्लान हो चुकी, उसी को फॉलो किया जाए। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कानो कान खबर न होती और कुछ लोगों ने खंदक कम चौड़ी खींची होती, तो इज्तमाई कामों में फिर मशवरे की अहमियत भी इससे पता चलती है। मुसलमान पूरी तरह से उन पर नज़र रखे हुए थे, तीर बरसाते जा रहे थे, क्योंकि कोई खंदक के करीब आएगा तो फिर उसको खानी पड़ेंगे तीर, कहीं वो कूद ना पड़े या मट्टी डालकर कोई ऐसा वक्ती रास्ता ना बना ले जो उनको ले जाए। कुरैश के शख्सवारों को ये गवारा न था कि खंदक के पास मुहासरे के नतायज के इंतज़ार में बेफायदा बैठे रहे, ना इसकी उनको आदत थी और शान के ख़िलाफ़ थी ये बात। चुनाच उनमें से एक जमात ने अमर बिन अब्द वुत, इकरमा बिन अबी जहल और दरार बिन खत्ताब वगैरह थे, इन सब ने मिलकर एक तंग मुकाम से खंदक पाक कर ली। देखिए ज़रा कैसी कमिटमेंट है कुफर की, कि मुमकिन जो चीज़ नहीं लग रही उसको भी मुमकिन करके दिखा दिया। इनके घोड़े खंदक और सला के दरमियान चक्कर काटने लगे। इधर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद मुसलमानों के हमराह निकले और जिस मुकाम से उन्होंने घोड़े कुदाए थे, इसे कब्ज़े में लेकर उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इस पर अमर बिन अब्द वुत ने मुकाबले के लिए ललकारा कि अच्छा आओ फिर हम आए हैं तो लड़ते। हज़रत अली ने कहा ठीक है, दो दो हाथ कर लेते हैं।
और एक ऐसा फिकरा चस्त किया कि वो तैश में आकर घोड़े से कूद पड़ा और उसकी कूछें काटी, इसके चेहरे को मारा और हज़रत अली के सामने आ गया, यानी गुस्से में अपने ही घोड़े को नुकसान देने लगा। बहादुर भी था, शहजोर भी था, जोर की टक्कर हुई दोनों में, हर एक ने दूसरे से बढ़ चढ़ कर वार किए और बिलाखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने इसका काम तमाम किया। बाकी मुशरिकीन भाग कर खंदक पार कर चुके थे, वो इस कदर मरूब थे कि इकरमा ने भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ दिया। तो आप देखिए कि खंदक खोद के सोनेंगे घर में, कितना थके होंगे, ज़रा आप कोई इमेजिनेशन में लाइए चीज़। हम ज़रा सा दीन का काम कर लें तो उसके बाद हम थक जाते हैं, हम कहते हैं हमें रेस्ट चाहिए। हो सकता है सारी रात तैयारियां करते रहें और जिस वक्त मौका आए, कोई प्रोग्राम हो, उस वक्त हम हो ना जी, हम सो गए थे या ऊँग रहे हो। सहाबे किराम इतनी बड़ी खंदक खोदने के बाद मुसलसल हालात पे नज़र रखे हुए थे और किसी को भी उन्होंने इसकी जुरत ना दी कि वो खंदक को पार कर सकें। जब इन लोगों से मामला पूरा हुआ तो मुशरिकीन ने फिर भी कोशिश की, कभी कभी खंदक पार करते, रास्ता बनाने की कोशिश करते, लेकिन मुसलमान उनको रोकते। और ऐसे मौके पर सबसे बेहतरीन चीज़ जो थी वो तीर थे। इतनी बहादुरी से मुसलमानों ने मुकाबला किया कि मुशरिकीन की हर कोशिश नाकाम हो गई। इसी तरह के मुकाबलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद सहाबा कराम की कुछ नमाज़ें फौत हुईं। बुहारी और मुस्लिम की मारूफ रिवायत है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खंदक के रोज़ आए और कुफ़ार को सख्त सुस्त कहने लगे, अल्लाह के नबी बमुश्किल आज मैंने तो डूबते सूरत के साथ नमाज़ पढ़ी, यानी इशारा था कि असर की नमाज़ लेट पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो वल्लाह ही भी नमाज़ पढ़ी ही नहीं। इसके बाद हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुथान में उतरे, आपने नमाज़ के लिए वुज़ू फरमाया और हमने भी वुज़ू किया, फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ी। ये सूरज डूब चुकने के बाद की बात है। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ हम देखिए कि मकसद से प्यार और लगन बस दफ़ा इंसान को इबादत से भी थोड़ा सा दूर कर देता है, लेकिन इस मौके को गनीमत नहीं जाना। अच्छा भी क्या करें, अब तो जंग करने आए हैं। नमाज़ बहरहाल पढ़ी। और इसी तरीके से और भी कुछ मकामात पर हुआ। मुस्नद अहमद और मुस्नद शाफ़ी में है कि मुशरिकीन ने आपको जोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज़ों की अदायगी से मसरूफ़ रखा, यानी किसी दिन जोहर, किसी दिन असर, इस तरह से। चुनाचे आपने ये सारी नमाज़ें यकजा पढ़ी, यानी ये चारों ही छोड़ दी। अब देखिए वो हालात कैसे होंगे। इमाम नवी कहते हैं कि इन सारी रिवायतों की तत्बीक, यानी इन सबको मिलाना किस तरह होगा, कि जंगे खंदक का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा, बस किसी दिन एक सूरत पेश आई और किसी दिन दूसरी। अब देखिए कि यहाँ से एक मसला भी समझ आता है। बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसी चीज़ में घेर लिया जाता है कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी नमाज हो जाएगी, और ख़ास तौर पर अगर वो नॉर्वे की सर्दियाँ होंगी तो हो सकता है कि 5-6 घंटे में उसकी पांचों नमाज़ें चली जाएं। मसलन कोई किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी है, अब डॉक्टर बिजी है, 6 घंटे का ऑपरेशन है। अब इस सूरत में मुमकिन हद तक तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ऐसी इज़्तिरारी कैफियत आ जाए तो यहाँ से फिर आपको उनसे मामला करना भी दिखेगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से सिखा दिया। जंग जारी रही, खंदक उबूर करने की कोशिशें भी थीं और दूसरी तरफ से दिफा भी था। खंदक जो थी वो इस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढाल बन चुकी थी, सिर्फ तीर अंदाजी होती रही। दोनों तरफ से कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, 6 मुसलमानों के और 10 मुशरिकीन में से। इसी तरह एक या दो आदमी तलवार से कत्ल किए गए। इसी तीर अंदाजी के दौरान साद बिन मास को भी एक तीर लगा जिससे इनके बाजू की बड़ी रग कट गई। हब्बान बिन इरका नामी एक मुशरिक का तीर इनको लगा। हज़रत साद ने ज़ख्मी होने के बाद अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल की तकज़ीब की और इनको निकाल बाहर किया, इनसे तेरी राह में जिहाद करना मुझे किस कदर महबूब है, इतना किसी और कौम से नहीं। अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब तूने हमारी और इनकी जंग को आखिरी मरहले तक पहुँचा दिया, बस अगर कुरैश की जंग कुछ बाकी रह गई हो तो मुझे इनके लिए बाकी रख कि मैं इनसे तेरी राह में जिहाद करूँ, और अगर तूने लड़ाई ख़त्म कर दी है तो इसी ज़ख़म को जारी करके इसे मेरी मौत का सबब बना दे। ये दुआएं कौन मांगता है जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ होता है। और देखिए उनको अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत है, क्या आपको तकलीफ़ देने वालों के साथ लड़ना उनको इतना अजीज़ है। देखिए इनकी इस दुआ का आखिरी टुकड़ा ये था कि अल्लाह मुझे मौत ना देना, यहाँ तक कि बनू कुरैज़ा के मामले में मेरी आंखें ठंडी ना हो जाएं। ये कौन थे इसका जिक्र आगे आ रहा है, वहीं बताऊंगी वरना आपके लिए थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होगा। लेकिन ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने इनकी दुआ मनो अन कबूल की, इनका ज़ख़म रुक गया, जो ज़ख़म बह रहा था ऐसे लगा कि जैसे खून थम गया। एक तरफ मुसलमान महाजिर जंग पर इन मुश्किलात से दोचार थे, दूसरी तरफ साजिशें हो रही थीं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस किस्म के ताने बाने बुने जा रहे थे कि किसी तरह मुसलमानों को नुकसान दिया जाए। ऐसे मौके पे कबीला बनू नज़ीर, जो यहूद का कबीला था और पहले ही यहाँ से निकलवा दिया गया था, उसका सरदार हुई बिन अख्तब बनू कुरैज़ा के पास आया। समझ लीजिएगा, दो कबीले तो जा चुके, हम पिछली नशिस्तों में देख चुके, खैबर की तरफ चले गए, बनू नज़ीर भी जा चुका और बनू कैनका भी। एक तीसरा कबीला जो नस्बतन कमज़ोर कबीला था, गरीब कबीला था, तादाद में छोटा था, जिसको बनू कुरैज़ा कहते हैं, इनके किले मुसलमानों के बिल्कुल करीब थे और अभी तक ये लोग मदीना में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक के मदीना के तहत इनसे मुआहदा किया हुआ था कि बाहर से हमले की सूरत में तो मुसलमानों का साथ दोगे। लेकिन इस जंग में क्या हुआ, खुय बिन अख्तब बनू कुरैज़ा के पास आया और उसके सरदार काब बिन असद कुर्जी से बात की। ये काब वही शख्स है जो बनू कुरैज़ा की तरफ से अहदो पैमान यानी डॉक्यूमेंटेशन करने का इख्तियार रखता था और जिसने अल्लाह के नबी से ये माहदा भी किया हुआ था कि जंग के मौके पर आपकी मदद करेगा। हुई ने आकर जब इसके दरवाजे पर दस्तक दी, इसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, मगर हुई उससे ऐसी ऐसी बातें करता रहा कि आखिरकार इसने दरवाज़ा खोल ही दिया। यानी पहले तो खोला नहीं कि डर था और अब फिर खोल दिया। हुई ने कहा, ऐ काप, मैं तुम्हारे पास हमेशा की इज्जत और फ़ौजों का बहरे बेकरां लेकर आया हूँ कि मेरी बात मान लो, फिर देखो तुम्हें सारी ज़िंदगी की इज्जत मिल जाएगी और बहुत सारे लोग तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। मैंने कुरैश को उसके सरदारों और कायदीन समेत लाकर रोमा के मजमा सियाल में उतार दिया है। और याद रखिए, किसी ने तो सबको प्रवोक किया कि पीछे से ते कोशिशें तो इनकी मिली जुली थी, पहले मक्का वालों को जमा किया, गतफानियों को, अब आके अपनी ही कौम के लोगों को प्रवोक कर रहा है। कहने लगा कि बनो गतफान को इनके कायदीन और सरदारों समेत तोहत के पास खैमों में उतरवा दिया है। इन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो मोहम्मद सल्लम और उनके साथियों का मुकम्मल सफाया किए बगैर यहाँ से ना चलेंगे। यानी सबस भाग दिखा रहा है, बल्कि सबस से भी कुछ ज़्यादा ही भाग दिखा रहा है कि अब ये सब ख़त्म हो जाएगा, मुराद ये था कि तुम हमारा साथ दो। सोचने की बात है, गौर व फिक्र की बात है, कल भी साजिशें थी, आज भी साजिशें हैं। कल भी लोग इस तरह की बातें करके इस्लाम के ख़िलाफ़ करते थे कोशिशें, आज भी करते हैं। काब ने इसकी बात सुनी, कहने लगा, रहने दो भाई, तुम तो खुदा की कसम मेरे पास हमेशा की जिल्लत और फ़ौजों का बरसावा बादल लेकर आए हो जो सिर्फ गरज चमक रहा है, मगर इसमें कुछ रह नहीं गया। हुई तुम पर अफसोस, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिद्क व वफा के सिवा कुछ नहीं देखा। ये कौन कह रहा है, एक दुश्मन कह रहा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ ना अल्लाह के नबी के मामले में। मगर हुई बिन अख्तब इसको अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गया। कहने लगा, देखो, इस मकसद के लिए यह तो पैमान करना पड़ेगा कि अगर कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किए बगैर वापसी की राह ली तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे किले में दाखिल हो जाऊंगा, क्योंकि इसको पता था कि इस सूरत में अल्लाह के नबी इनसे बदला लेंगे। दिन ब दिन इस बात का एहसास शिद्दत पकड़ता जा रहा है कि अल्लाह के नबी कभी भी अहद शिकनी को गवारा नहीं करते थे। जिसका अहद नहीं उसका ईमान नहीं, जिसके अंदर अमानत नहीं उसका ईमान नहीं। आज मुसलमान क्यों नहीं ऐसे? आज हम कितने ज़्यादा लेज़ी, रिलैक्स, रिलक्टेंट हो गए। गैर मुस्लिम आज जो तरक्की करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये कमिटमेंट को निभाते हैं। अल्लाह के नबी की पर्सनैलिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है, आगे भी देखेंगे आप और पीछे भी हम इसकी मिसालें देख चुके। और दुश्मन तक इस बात को जानते थे कि इसके बाद हमारी खैर कोई नहीं और हम तुम्हारे साथ जाएंगे, जो तुम्हारा अंजाम होगा वही हमारा होगा। जब उसने ये वादा किया तो काब बिन असद ने अल्लाह के नबी से किया हुआ अहद तोड़ा और मुसलमानों के साथ तय की हुई जिम्मेदारियों से मुबर्रा होते हुए उनके खिलाफ मुशरिकीन की जानिब से जंग में शरीक हो गए। अब आप सोचिए कि वो फौजों की फौजें आई हुई हैं, वो तो इस्लाम को नुकसान नहीं दे सक रही क्योंकि वो खंदक से बाहर है, लेकिन ये तो आस्तीन के सांप बन के मदीना में है, शहर के अंदर मौजूद है। इनसे कितना ज्यादा इंसान को नुकसान पहुंच सकता था, इसका अंदाज़ा एक इंसान खुद भी लगा सकता है। बनू कुरैज़ा के यहूद अब अमली तौर पर जंगी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए। हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब जो थी, ये हज़रत हसान बिन साबित के फारे नामी किले के अंदर थी। हज़रत हसान औरतों और बच्चों के साथ वहीं थे। हज़रत सफ़िया कहती हैं कि हमारे पास से एक यहूदी गुज़रा, याद रखिए कि नबी सल्लम की फूफी थी, कहती हैं कि एक यहूदी गुज़रा और किले का चक्कर काटने लगा। ये उस वक्त की बात है जब बनू कुरैज़ा रसूलुल्लाह से किया वहदों पैमान तोड़कर आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अब हमारे और इनके दरमियान कोई था नहीं जो हमारा दिफा करता। रसूलुल्लाह तो पहले ही दुश्मनों के बीच में फंसे हुए थे। अगर हम पर कोई हमलावर हो जाता तो आप इन्हें छोड़कर आ नहीं सकते थे। इसलिए मैंने कहा है, हसान, ये यहूदी जैसा कि आप देख रहे हैं किले का चक्कर लगा रहा है, और मुझे खुदा की कसम अंदेशा है कि ये बाकी यहूद को भी हमारी कमज़ोरी से आगाह कर देगा, यानी ये बता देगा कि इनके पास तो मर्द ही कोई नहीं, मर्द तो सारे गए हैं और ये पीछे बच्चे हैं सारे या औरतें हैं। तो आप ज़रा इसके लिए कुछ कीजिए। यहाँ सिर्फ देखिए कि उस दौर की औरतें कितनी समझदार थीं। हमारे जैसी औरतें होती तो बेहोश हुई होती, खौफ से पता नहीं उनका क्या हाल हो जाता। ये कहने लगी कि कुछ कीजिए। अच्छा, हसान बिन साबित जो थे ये शायर थे, और आपको पता कि शायर तो ज़रा नाजुक मिजाज ही होते हैं। कहने लगी कि आप उनको कत्ल कीजिए। लेकिन हज़रत हसान ने कहा, वल्ला ही आप जानती है मैं इस काम का आदमी नहीं हूँ। हर बंदा कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं वो ग्रोसरी भी नहीं ला सकते, कुछ कुछ भी नहीं करते। कहने लगे, भाई सॉरी, आई कैन डू इट। हज़रत सफ़िया कहती है, अच्छा चलें ठीक है। बीचों खुद अपनी कमर बांधी, स्तून की एक लकड़ी ली और इसके बाद किले से उतर कर इस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से मार मार कर उसका खात्मा कर दिया। सुभान अल्लाह। इसके बाद किले में वापस आई और हसन से कहा, जाइए अब इसके हथियार और असबाब उतार लीजिए, क्योंकि वो मर्द है और मैंने इसलिए इसके हथियार नहीं उतारे। हसन फिर कहने लगे कि मुझे उसके हथियार और सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कई मर्द होते हैं वो चूहा भी नहीं मार सकते, मर्द को मारने की तो बात ही बहुत बड़ी है। बहरहाल, लेकिन हज़रत सफ़िया जो अल्लाह के नबी की फूफी थी, उनके इस कारनामे का इतना गहरा असर पड़ा मुसलमान औरतों और बच्चों की हिफाजत पर कि यहूद जो समझे कि इन किलों के अंदर भी मुसलमानों के हिफाजती दस्ते मौजूद हैं। हालांकि वहाँ कोई लश्कर नहीं था, लिहाजा यहूद को दोबारा इस किस्म की जरूरत ना हुई। अलबत्ता वो बुत परस्त हमलावरों के साथ अपने इत्तेहाद और उनका साथ देने का अमली सबूत पेश करने के लिए उनको रसद भी देते रहे, क्योंकि वो तो बाहर से आए थे या बंदर से उनको खाना पानी दे रहे थे, क्योंकि इस वक्त हथियारों की नहीं खाने की तो ज़रूरत थी। मक्का वाले ये तो नहीं सोच के आए थे कि वहाँ हम बैठेंगे इतने दिन, कुछ खाने पीने फ्रिज फ्रीज़र साथ थोड़ी थे, ज़रूरत थी खाने की, तो ये अंदर से फिर इनको खाना दे रहे थे। मुसलमानों ने इनकी रसद के 20 ऊँटों पर भी कब्ज़ा किया। अल्लाह के नबी पर यह बात खुल चुकी थी कि यहूद ने अहद तोड़ दिया। आपने पहले तहकीक करवाई ताकि पता तो चले। यहाँ से भी आपको एक बात समझ आई कि एकदम अंधाधुंध बात नहीं कर दी, बल्कि आपने पहले तहकीक की कि पता चले कि बनू कुरैज़ा का मौक़िफ़ क्या है, फिर इसके नाते से फ़ौजी नुक्ते नज़र से जो इकदाम मुनासिब हो इख्तियार किया जाए। आपने इस ख़बर की तस्दीक के लिए हज़रत साद बिन माज, साद बिन उबादा और अब्दुल्ला बिन रवाखा और ख़वात बिन जुबैर को रवाना किया और कहा कि जाकर देखो जो कुछ बनू कुरैज़ा के बारे में मालूम हो वो ठीक है कि नहीं, और आके मुझे खुल के ना बताना, क्योंकि हौसले टूट जाएंगे। मुसलमान बेचारे जो लड़ रहे थे उनको पहले ही पता है कि बाहर दुश्मन आया हुआ है, बंदर भी आ गए। यहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ देखिए, बस मैनेजमेंट के लोग इतना घबरा जाते हैं कि मेहमानों तक को पता चल जाता है कि पत्ती नहीं है, ये चीनी नहीं है, खोदा बहाड़ चूहा निकला ली बस दफ़ा बात होती है। सारे इतने मुस्तर होते हैं और बस बड़े होते हैं वो पी जा, कोई बात नहीं सब ठीक है, ऊपर से मुस्कुराते रहेंगे, दिमाग से सोचते रहेंगे अच्छा फलां चीज़ कैसे लेनी है, खाना खुल गया, प्लेटें नहीं है, चम्मच नहीं है, ग्लास नहीं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये बेहतरीन लीडरशिप होती है कि दूसरे को अपना राज ना दीजिए, अपने दिल की घबराहट ना बताइए। इसलिए आपने कहा कि जो भी बात हो बस इशारों में बताना ताकि मुसलमानों के हौसले पस ना। और दूसरी बात है कि अगर झूठी खबर है, एहतो बेमान पर कायम है, तो फिर लोगों में खोल के बता देना ताकि उनकी हिम्मत और बन जाए। खैर, ये बनू कुरैज़ा के पास पहुँचे, देखा तो वो तो बहुत ही बुरे इरादों में थे, एलानियाँ गालियाँ दी, दुश्मनी की बातें की, अल्लाह के नबी की इहानत की। कहने लगे, अल्लाह का रसूल कौन? हमारे और मोहम्मद के दरमियान कोई ना अहद है ना पैमान। नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर ये लोग वापस आए। अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँच कर सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ उजल और कारा कहा। पीछे सुन चुके हैं आप कैसे इन दो कबीलों ने मुसलमानों के साथ अहदी की थी, तबलीग की नीयत से आलिमों को मंगवाया और बाद में कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के नबी समझ गए कि जिस तरह उजल और कारा ने सहाब रजी के साथ अहदी की, इस तरह यहूद ने भी अहद तोड़ दिया। सहाब कराम ने बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आम लोगों को सूरत हाल का इल्म हुआ। अब तो समझें कि एक इतनी खौफनाक किस्म की कैफियत आ गई कि जिसका तसव्वुर करके भी इंसान कांपता है। बाहर से दुश्मन आए तो अंदर छुप जाएंगे, घर के दुश्मन से कौन बचे? इंतहाई नाजुक सूरत हाल। पीछे बनू कुरैज़ा थे जिनका हमला रोकने के लिए इनके और मुसलमानों के दरमियान कोई नहीं, आगे मुशरिकीन का एक बड़ा लश्कर जिनको छोड़कर हटना मुमकिन नहीं। ज़रा मुसलमान जगह छोड़ते तो वो खंदक से कुछ भी कूद काद के आ जाते। फिर आप देखिए, मुसलमान बच्चे और औरतें बग़ैर किसी हिफाजती इंतज़ाम के यहूदियों के बिल्कुल करीब थे। इसलिए लोगों में सख्त इज़तराब हुआ। इसकी कैफियत कुरान पाक में बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब भी इस आयत को पढ़ती हूँ तो मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर हम उस जगह पे खड़े होते हमारा क्या हाल होता। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 10 और 11 है सूरत अल अहज़ाब की, व इस ज़ागत अल अबसार व बलगत अल कुलूब अल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलिया अल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। और जब निगाहें टेढ़ी हो गईं, दिल हलक में आ गए और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, इस वक्त मोमिनों की आजमाइश की गई और इन्हें शिद्दत से झंझोड़ दिया गया। ऐसे मौके आए इस्लाम पे, अल्लाह ना दिखाए कभी हमें ऐसे मौके, लेकिन आप देखिए कि हम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते किन हालात में ये सब कुछ हो रहा था, कैसे अल्लाह ताला अपने नबी को इन मुश्किलात में डाल रहा था और कैसे सीसा फैलाई दीवार की तरह मुसलमान जमे हुए थे। ऐसे वक्त पे बाज़ मुनाफिकीन के निफाक ने भी फिर सर उठाया, कहने लगे, मोहम्मद तो हमसे वादे करते थे कि हम कैसरो किसरा के खजाने पाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ ये हाल है कि पेशाब पखाने के लिए जाने की भी इजाज़त नहीं। बस और मुनाफिकी ने अपनी कौम के चुने हुए लोगों के सामने यहाँ तक कह दिया कि जी हमारे घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, हमें इजाज़त दीजिए हम अपने घरों को जाएं, क्योंकि हमारे घर शहर से बाहर हैं। यहाँ तक कि बनू सलमा कबीला, जो बहुत मुखलिस कबीला था, इनके पाँव तक उखड़ रहे थे, पीछे जाने की सोच रहे थे। ऐसे ही लोगों के बारे में आयत 12 और 13, 12 और 13 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ यकूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरदुम मा वादना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया है वो फरेब के सिवा कुछ नहीं, और जब इनकी एक जमात ने कहा कि अहले यसरब तुम्हारे लिए ठहरने की गुंजाइश नहीं लिहाजा वापस चलो, और उनका एक फरीक नबी से इजाज़त मांग रहा था, कहता था हमारे घर खाली पड़े हैं, हालांकि वो खाली नहीं थे और ये लोग सिर्फ फरार चाहते थे। बहाने जी मजबूरी है, बच्चे घर में हैं, खाना नहीं पका, कुछ इस किस्म की बातें कर करा के भागना चाहे। और एक तरफ लश्कर का हाल ये था कि जहाँ ये बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी की हालत, जो ही आपने बनू कुरैज़ा की बदहदी की खबर सुनी, अपना सर और चेहरा कपड़े से ढांक लिया और सीधे लेटे रहे। इस कैफियत को देखकर लोगों का इज़्तिराब और ज़्यादा बढ़ा, लेकिन इसके बाद आप पर उम्मीद की रूह ग़ालिब आ गई। आप अल्लाह अकबर कहते हुए उठे और फरमाया, मुसलमानों अल्लाह की मदद और फतह की खुशखबरी सुन लो। ये है ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, मुश्किल हालात में फरिश्ते आते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं। वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की खुशखबरियाँ जिसके तुमसे वादे किए जाते थे। आपने आइंदा आने वाले हालात से निपटने का प्रोग्राम बनाया, प्लानिंग की। इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा था कि मदीने की निगरानी के लिए फ़ौज में से कुछ मुहाफिज भेजे जाएं। ताकि मुसलमानों को गाफिल देखकर यहूद की तरफ से औरतों और बच्चों पर कोई हमला ना हो। ज़रा सोचिए तो सही, कितने मल्टीटास्किंग थे प्रोफेसर सल्लम, इधर की फिक्र उधर का गम। लेकिन ये कब होता है जब बंदा खुद कूल माइंडेड रहे। सब ठीक है, आप तो ठीक रहे। बस लोग जिनको काम दिया जाए वो खुद इतना बुखला रहे होते हैं कि दूसरे को खबर ही नहीं होती। दूसरे को ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, बाद में पता चलता है वो चमच नहीं है। इस तरह की कैफियत अच्छी नहीं होती। ईमान सुकून का नाम है। आपके अंदर अगर ठहराव नहीं तो अंदाज़ा लगाइए, चेक कीजिए कमी कहाँ है। जब अपने मामला अल्लाह पे छोड़ दे वो नहीं घबराता। अब जी ये हमारे जो भी है हो जाएगा मामला ठीक, मर जाएंगे ना फिर क्या, कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह के रास्ते में हम अल्लाह के लिए निकले थे, वो कदरदान है। यकीन करें इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग करें ना तो बड़ी से बड़ी नाकामी भी आपको हिम्मत देगी। अल्लाह के नबी सल्लम ठंडे दिमाग से ये सब कुछ कर रहे थे, एक तरफ उनकी दुश्मन पे नज़र, दूसरी तरफ औरतों और बच्चों की हिफाजत। अब इस मौके पर एक फैसला कुन इकदाम की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए दुश्मन के मुख्तलिफ गिरोहों को एक दूसरे से बेताल्लुक़ किया जाए, यानी इनके अंदर कुछ फूट डला दी जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह के नबी ने सोचा कि बनू गतफान के दोनों सरदार उयैना बिन हसन और हारिस बिन औफ, इनसे मदीना के एक तिहाई पैदावार पर मुसालहत कर लें ताकि ये दोनों सरदार अपने अपने कबीले लेकर वापस चले जाएँ। यहाँ फिर हिकमत की बात देखिए कि उनको कुछ ना कुछ दे लेकर वापस कर दो और मुसलमान तन्हा कुरैश पर हमला करें, और उनका अंदाज़ा वो लगा ही चुके थे, यानी इनको थोड़ा तोड़ो। यहाँ फिर अमल की बात है। दो तीन दुश्मनों से निपटने की बजाय किसी एक दुश्मन पे फोकस किया जाए और बाकियों को कुछ लालच दे दिला के रखा जाए। कहा कि ठीक है भाई जाओ, मदीना में जितनी भी फसलें पैदा होंगी एक तिहाई हम तुम्हें दे देंगे। बात तो मुश्किल थी लेकिन देखिए कभी कभी पैसा लगाना पड़ता है। अपनी जान से कुछ लगाएं ताकि इस्लाम को फ़ायदा हो। आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिल जाएंगे ज़िंदगी में। जब आप दीन के कामों में आगे आएंगे ना तो बस दफ़ा आपको अपने रूल्स को तोड़े बगैर अपनी ज़ात से कुछ देना पड़े तो दे दीजिए। ऐसे मौके आते रहते हैं कि जहाँ आप दीन से ना लें अपनी ज़ात से दे दें ताकि लोग दीन की तरफ आते रहें। अल्लाह के नबी ने ये बात की, फ़ायदा हुआ। लोगों ने कुछ ने कहा करें कुछ ने कहा ना करें, मगर जब हज़रत साद बिन माज और साद बिन उबादा से इस बारे में आपने मशवरा किया तो दोनों ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया तो हम खुशी से मानेंगे, और अगर आप सिर्फ हमारी खातिर कर रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत है या हम ना लड़ें तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम खूब लड़ेंगे। जब हम लोग और ये लोग दोनों शिर्क और बुत परस्ती पर थे तब तो ये लोग मेज़बानी या ख़रीदो फरोख के सिवा किसी और सूरत से एक दाने की भी तमा नहीं कर सकते थे। यानी जब हम कमज़ोर थे तो हमने तो कभी इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी, इनको हमसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, और अब अल्लाह ने हमें इस्लाम अता किया, इज़्ज़त दी, तो क्या अब हम अपना माल इनको दें। वल्लाही हम तो सिर्फ़ अपनी तलवारें इनको देंगे। आपने इन दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया और फरमाया, जब मैंने देखा कि सारा अरब एक कमान खींच कर तुम पर पल पड़ा है तो महज तुम्हारी खातिर ये काम मैंने करना चाहा। देखिए कि ये यहाँ से एक लीडर का अपने लोगों पर काम के बोझ को कम करना भी दिख रहा है। सोच रहे थे कि मेरे सहाबा कटेंगे मरेंगे, लड़ना तो इनको ही पड़ेगा ना, तो चलो कुछ कर दूँ आसानी। जैसे ऐसी है कि बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और काम करने लिए थक रहे हैं तो लीडर कह चाहे कोई बात नहीं छोड़ दें, बाज़ार से मंगा लेते हैं, पैसे लग जाएंगे ना, खैर है। लेकिन कुछ बोलेंगे भाई क्या हुआ, हम खुद पका लेंगे, बाज़ार से नहीं मंगाना, पैसे बचाना है, ये कैफियत है। तो सहाबे कराम की ये बात सुनकर आप खुश हुए और आपने फिर ये काम नहीं किया। फिर उसके बाद अल्लाह की तारीफ के दुश्मन जलील हो गए, उनकी जमात को शिकस्त हुई, उनकी कुव्वत टूट गई। जब हम कुछ नहीं कर पाते ना तो अल्लाह खुद ही अपने काम करवा देता है। बाज़ दफ़ा आप पैसा लगा के भी वो काम नहीं कर पाते जो अल्लाह बग़ैर पैसे लगाए के करवा देता है, उनमें खुद ही फूट पड़ गई। बनू गतफान के एक शख्स थे, नुएम बिन मसूद उनका नाम था, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं मुसलमान हो गया हूँ लेकिन मेरी कौम को मेरे इस्लाम लाने का इल्म नहीं है, लिहाजा आप मुझे कोई हुक्म दीजिए। اللہ کے نبی نے فرمایا، تم فقط ایک آدمی ہو، یعنی کوئی فوجی اقدام تو کر نہیں سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کسی طرح ان کو نقصان دے سکتے ہو تو دے دو، اور تم اکیلے کسی سے لڑ تو سکتے نہیں۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے یہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان کا ان سے بڑا میل جول تھا، تعلقات تو ہوتے ہی ہیں نا، یہ تو عقیدے کی جنگ ہے، ورنہ تو یہ سب پیچھے سے ایک ہی تھے۔ وہاں پہنچے، کہنے لگے، دیکھو تم تو مجھے جانتے ہو، مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ کہیں گے جی بالکل ہے تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، تم قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے فرق ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا اپنا گھر بار ہے، مال دولت ہے، بیوی بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے تو محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ان کا نہ یہاں گھر بار ہے، نہ مال دولت، نہ بچے بیوی، اس لیے ان کے موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ اپنا بستر بوریاں اٹھا کے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ سوچو، آپ تو یہاں ہیں اور محمد بھی یہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے، بولے نعیم پھر آپ بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا، دیکھو قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو، یعنی قریشیوں سے کہیں کہ کچھ لوگ ہمیں دے دیں جو ہمارے ساتھ رہیں، جس طرح ایک قسم کا آپ کہہ لیجئے ٹوکن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ قریظہ نے کہا، یہ تو بہت اچھی رائے ہے، ہم مان گئے۔ اب یہاں سے اٹھے نعیم، سیدھے قریش کے پاس پہنچے، ان کو بھی وہی باتیں کی کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور خیر خواہ ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ سب؟ ہاں یہ تو ہے۔ کہیں گے، اچھا تمہیں پتہ ہے وہ یہود نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جو عہد شکنی کی تھی نا، اب اس پہ وہ بہت شرمندہ ہے، اشارہ تھا بنو قریظہ کی طرف، اور اب تو یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ ساتھی لینا چاہتے ہیں، یرغمال بنا کر ان کو لیں گے اور محمد کے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ کچھ ساتھی طلب کریں تو آپ نہ دیجیے گا۔ اچھا، ڈر گئے وہ، شکر ہے آپ نے ہمیں بتا دیا۔ یہاں سے اٹھے، قبیلہ غطفان کے پاس گئے، یہی بات ان کو بھی کہہ دی کہ دیکھو بنو قریظہ والے تم سے کچھ لوگ مانگیں گے، تم نے دینے نہیں ہیں۔ خیر تینوں کے بیچ میں بات ہو گئی، جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات تھی، قریش نے یہود کو پیغام پہنچایا کہ بھائی ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہا، نہیں بھائی نہیں، آج تو ہفتے کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے، ہم عذاب کا دوچار نہیں ہونا چاہتے، اور دوسری بات ہے کہ آپ اپنے کچھ لوگ ہمیں دیں، ہم تب تک لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے جب تک تمہارے کچھ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں۔ قاسم جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کرے واہ، نعیم نے تو سچ کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر قریظہ نے کہا کہ واللہ نعیم نے تو ہم سے سچ کہا تھا۔ اس طرح سب گروہوں میں پھوٹ پڑی، اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، اور یاد رکھیے باطل کبھی بھی نہیں پنپتا، جو گٹھ جوڑ اسلام پہ ہوتے ہیں نا وہ نبھتے ہیں قربانیوں کی قیمت پہ بھی، لیکن جو صرف اپنے ناموں پہ اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوں وہ نہیں رہتے۔ ان کی صفوں میں پھوٹ پڑی، حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا و آمر عوراتنا، اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطروں سے بچا لے، امن میں رکھ دے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر جو دعا تھی، اللہم منزل الکتاب سری الحساب احزم الاحزاب اللہم احزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نفس سلم اور مسلمانوں کی دعائیں سنی، مشرقین کی صفوں میں پھوٹ پڑی، بد دل ہوئے، ٹھنڈی ہوائیں چلیں، سخت سردی تھی، ان کی ہانڈیاں الٹ رہی تھیں، ان کے خیمے اکھڑ رہے تھے، تیز ہواؤں کا طوفان اللہ نے بھیج دیا، ان کے خیموں کی جو ڈوریاں تھیں وہ اڑ رہی تھیں، کھونٹیاں اپنی جگہ سے اتر رہی تھیں، ہر چیز الٹم پلٹم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا जिसने इनको हिलाया और इनके दिलों में रोब और खौफ डाल दिया। बहुत सख्त दिन थे। आप देखिए, कोई कोई जंग बहुत गर्मी में हुई और कोई बहुत सर्दी में। ये तो सर्दी की जंग है, आगे हम तबुक पढ़ेंगे, गर्मियों की थी। बड़े दर्द के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अल्लाह के नबी तो गर्मी सर्दी में दुश्मन से लड़ने चल पड़े, हम सिर्फ दीन सीखने और सिखाने नहीं आते। जब हमारे पास नरम कंबल भी हैं, जैकेट्स भी हैं, चादरें भी हैं, गाड़ियाँ भी अच्छी, बसें भी अच्छी, बिल्डिंग्स भी अच्छी, हम कितने ऐशकोश हो गए। अल्लाह को कितनी गैरत आती होगी आज के मुसलमान पे। कभी गर्मी बढ़ी, कभी सर्दी बढ़ी, कभी बहार बढ़ी, कभी खिजाम बढ़ी, हम तो सारी ज़िंदगी अपने आप को ही फिसलाते फिसलाते रहते हैं। किस तरीके से अल्लाह ताला यहाँ अपने नबी को तैयार करें, किस तरह मुश्किल में उन्होंने अपने आप को रखा। ऐसी ही एक सर्द और कड़कड़ाती भी रात थी। अल्लाह के नबी ने पूछा, कोई है जो आज की रात ज़रा दुश्मनों की सफ़ों की खबर लेके आए? क्योंकि CID तो लाजमी थी, हालात पे नज़र तभी होगी ना जब दुश्मन का पता होगा। सब खामोश। आपने दोबारा पूछा, सब खामोश। फिर तीसरी बार आपने पूछा, कोई नहीं बोला, जुरत नहीं को कर रहा था उनको, था कि बाहर जाना, मौत को दावत देना। इतने में अल्लाह के नबी ने हुज़ैफ़ा बिन जमान का नाम लिया। हुज़ैफ़ा, आप जाएंगे? कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने चूँकि मेरा नाम ले लिया तो इनकार की जरूरत ना हुई। मैंने कहा, जी अल्लाह के नबी, मैं जाऊँगा। और कहते हैं, जो ही बाहर मैं आके अपने घोड़े पे बैठा, मुझे ऐसे लगा कि मैं गर्म पानी के हमाम में हूँ। वल्लाह ही मुझे बिल्कुल सर्दी ना लगी। मैंने जाके वहाँ देखा, चक्कर लगाया, इस तरह की कहानी की। और अल्लाह के नबी ने इनको कह भी दिया था कि सिर्फ खबर लाना, कोई बात ना करना, वहाँ कोई एक्शन नहीं लेना। कहते हैं इन्होंने जाके देखा, दुश्मन वापस जाने के लिए सामान तैयार कर चुके थे। कहते हैं कि बिल्कुल अबू सुफियान मेरी सीध में था, मेरे तीर की। मैंने तीर कस लिया कि आज अबू सुफियान को भी मारूं, और ये कितनी बड़ी फतह होती दुश्मन सरदार को मार देना। लेकिन फिर अल्लाह के नबी की बात याद आई कि सिर्फ खबर लेके आना, मारना नहीं, कुछ नहीं करना। कहते मैंने अबू सुफियान को छोड़ दिया। और आप देखिए कि उसी की वजह से अबू सुफियान को ईमान मिल गया। अगर कुफर में मारे जाते तो फिर इस्लाम तो ना मिलता। और यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के नबी जिस काम का भी हुक्म देते थे उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती थी, चाहे वक्ती तौर पर साथियों को वो बात समझ आए कि ना आए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने आकर अल्लाह के नबी को ख़बर दी। सुबह आपने देखा कि मैदान साफ है, अल्लाह ने दुश्मन को किसी खैर के हासिल करने का मौका दिए बगैर गुस्से और गज़ब के साथ वापस कर दिया। अल्लाह ने खुद ही उनसे जंग लड़ ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़नी ना पड़ी। इस तरह से अल्लाह ताला ने फिर अपने बंदे की तारीफ़ की। बड़ी प्यारी दुआ है कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना वादा पूरा किया, अपने लश्कर को इज़्ज़त दी, अपने बंदे की मदद की और अकेले सारे लश्करों को मदद दी। आज भी सफ़ा और मरवा पे सही के दौरान ये दुआ पढ़ी जाती है। बहरहाल, आप फिर मदीना आ गए। हम यहाँ बैठ के ये बातें पढ़ते सुनते हुए एक किस्म का थ्रेट फील करते हैं, लेकिन जिनको वहाँ लड़ना पड़ता था, ये तो आज हम कह रहे हैं ना, फतह हुई, फरिश्ते आए। इमेजिन कीजिए कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त तो कुछ नहीं पता था कल क्या होना है, जान अभी जा सकती है। लेकिन क्या हौसले थे और कैसे वो लड़े। शवाल 5 हिजरी में ये वाक़या पेश आया था। तकरीबन 1 माह तक दुश्मनों ने मुहासरा किया। शवाल में ही शुरू हुआ और ख़ात्मा कहते हैं कि ज़ीक़ात में हुआ। और अल्लाह के नबी खंदक से वापस आए, बुध का दिन था। और बाज़ कहते हैं ज़ीक़ात के ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे। जंगे अहज़ाब जान और माल के नुकसान की जंग नहीं थी, आसाब की जंग थी। तनाव था, स्ट्रेस था, टेंशन थी। कोई खून रेस मार्का पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुन जंग थी। इसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए और ये पता चल गया कि अब अरब की कोई कुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी बस्ती को नुकसान नहीं दे सकती। इस्लाम चलेगा और फैलेगा और ये आग बढ़ती जाएगी। किसी के बस में नहीं है कि वो अब अल्लाह के नबी के रास्ते में रुकावट बने। इसलिए अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे खंदक से वापसी पे फिर फरमाया, अल आना नक्ज़ूहुम वला यग़ज़ूना, نحن نسیر الیہم، یہ صحیح بخاری کی جلد 2 590 نمبر کی حدیث ہے، 590. اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یعنی قسم کا چیلنج تھا کہ آج کے بعد کی جنگیں جو ہیں یہ اوفینسو ہوں گی، ڈیفینسو نہیں. ابھی تک تو دشمن نے پہل کی نا، کب ہم آئیں گے. اور یہی ہے اسلام کا مزاج، پہلے خوب تیاری کرو، پہلے بچ بچاؤ کرو، پھر اس کے بعد اپنا معاملہ درست کرو. کیا حالات ہوئے ہوں گے، کس طرح جنگوں پہ جنگیں مسلمانوں پہ مسلط کی جاتی تھی، ہم تو اس سے بہت پہلے کمپرومائزنگ ہو چکے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ فزیکل وار، اعصاب کی وار، آج بھی اگر ہم اسلام کا یہ درد پال لیں نا، تو ہمارے بہت سارے ذاتی غم ویسے ہی ہمیں بھول جائیں. ہم ہر وقت خود کو پالتے رہتے ہیں، نتیجہ نکلتا جو ہے وہ آج سب کے سامنے دنیا کے نقشے پہ لکھا ہوا ہے، آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا ایمان پیدا کرنا چاہیے، اتنا یقین ہو ہمیں اللہ کی بات پہ، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو کہ ہم واقعی اس کو دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہم آگے کل شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، غلطیوں کی اصلاح کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.